आप देखिए कि ये एक अजीब सी बात है, जब ये कमज़ोर होने लगते हैं ना और हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं रहती, फिर बचपन में तो कैंडी लेनी होती है ना, फिर पॉकेट मनी लेनी होती है, फिर उनसे पैसे लेने होते हैं, फिर उनसे सेलफोन लेना होता है, फिर उनसे 10 यूरो लेकर घर से जाना है ताकि दोस्तों में जाके कोई बर्गर खाए, तो हमें ये अच्छे लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि बाहर ऐसे लगता है कि माँ बाप हमें कुछ नहीं दे सकते, और हकीकत है, यानी माएँ हमारे कपड़े नहीं धोती, बाप हमारे लिए पैसे नहीं कमाते, हम बड़े हो गए। लेकिन आपको पता है बूढ़े माँ बाप क्या करते हैं? वो करते हैं जो अमूमन आप और मैं जवानी में अपने लिए नहीं करते। कोई बताएगा क्या? ये दुआओं की पोटली हैं, ये जो बूढ़े बूढ़ियाँ घरों में बैठे हैं ना, वल्लाही ये दुआओं की मशीनें हैं। क्यों? बच्चे पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, मर्द जॉब कर रहे हैं, बीवियाँ, अब आप देखें ना घर में बहू हैं, वो बेचारी सारा दिन बच्चों में लगी रहती हैं और खाने पकाएंगी, बेटा है तो वो सारा दिन बाहर है फिर रहा है, कहाँ टाइम है बहू और बेटे के पास अपने लिए दुआएं करने का? नमाज ही पढ़ ले बच्चों के बीच में तो बड़ी बात है, वो अंदर बूढ़ी माँ और सास बैठी दुआएं कर रही है, और ये दुआएं बाद में नहीं मिलती। इन दुआओं के साथ जो ज़िंदगी में कामयाबियाँ होती हैं ना, ये इसके बगैर नहीं होती। मैं तो पूरे यकीन से आपको कह सकती हूँ कि अगर आप आज यहाँ इधर कुरान की क्लास में बैठे हैं ना, तो ये आपको किसी बड़े की दुआ लगी है। मैं तो अपने लिए कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि ये जो थोड़ा मोड़ा काम मेरे से अल्लाह ताला लेता है ना, ये मुझे किसी की दुआ लगी हुई है। मुझे अपने अंदर कोई खूबी नहीं नज़र आती। क्यों नहीं आती? इसलिए कि वो कहते हैं ना कि माँ बाप की दुआएं अर्शों के भाग लगाती हैं, और अगर आप अपने बच्चों के साथ वो ताल्लुक़ रखते हैं जो हकीकी ताल्लुक़ होना चाहिए, तो वाकई औलाद भी आपकी आंखों की ठंडक फिर बनने लगती है। और आप देखिए कि बाज़ रिवायात में आता है, मुझे उसकी सनद का यकीन नहीं है, कि हज़रत मूसा के बारे में आता है बनी इसराइली रिवायत में, कि अल्लाह सुब्हान तआला से बात करते थे ना, कलामुल्ला, मूसा कलीमुल्ला, तो लाडले भी थे, ज़रा ज़्यादा ही लाड करते थे, ज़िद भी कर ली, अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ, वाक्य तो अपने पढ़े हुए ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक दिन कहा कि मूसा, आज के बाद जब मेरे से बात करें तो ज़रा सा संभल के कीजिएगा, शायद आपकी किसी बात पे मुझे गुस्सा आ जाए। कहा अल्लाह ताला, अब क्यों? पहले तो कभी नहीं कहा। कहा इसलिए कि पहले तेरी माँ जिंदा थी, तेरी कई बातों पे मुझे गुस्सा आता था, लेकिन तेरी माँ की दुआओं की वजह से मैं तुझे माफ़ कर देता था। अब माँ नहीं रही दुआएं करने वाली, सोच के काम करना। को रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ज़िंदगी भर तो उनके साथ बात नरम, उफ नहीं कहना, झिड़कियाँ नहीं देनी, नरम बात करनी है, उनके सामने अपनी इस जिल्लत के बाजू झुकानी है, लेकिन उनके दुनिया से जाने के बाद की भी ये दुआएं हैं, रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बल्कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, जब माँ बाप थे तो इतनी अकल नहीं थी, तो उनके साथ ज़रा सा मामला सख्ती का किया, मुझसे नाराज़गी की हालत में वो फौत हो गए। अब देखिए किसी इंसान की कितनी बड़ी बदबख्ती है। अब एहसास होता है कि मुझे उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था, अब क्या करूं? अब एहसास है लेकिन माँ बाप नहीं है, तो कहा कि दुआ किया कर, रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यानी अगर माँ बाप नाराज़गी की हालत में भी फौत हुए हैं ना, तो बच्चे की बच्ची की इन दुआओं की वजह से अल्लाह उनको राज़ी कर देगा। और ये हकीकत में याद रखिएगा, माँ बाप की कामयाबी है कि उनकी औलादें दीन में उनसे अच्छी हों। और ये जो डांटना है ना, ये कहाँ डांटते हैं भला लोग, बाज़ दफ़ा लाड प्यार और मोहब्बत के इज़हार भी डांट के करते हैं, खाना भी दें कि खाएं आप, खाती क्यों नहीं आप? अच्छा, बाज़ लोग बच्चों की तरह माँ बाप को फिर डांटना शुरू हो जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता उन बेचारों को किसी चीज़ का परहेज़ है, शुगर हो गई, मिठाई नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, सब के सामने लोगों के उनके टोक देंगे, वो बेचारे प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, एकदम औलाद, अब ये मोहब्बत में चीख रही है ना, इजाज़त नहीं है, खाने दीजिए, जितने दिन ज़िंदगी के पूरे करेंगे खा के जाएंगे। लेकिन ये जो आपकी डांट और आपकी बदतमीज़ी का अंदाज़ है, इसने वैसे ही उनका शुगर लेवल लो कर देना। हमेशा माँ बाप के साथ हैंडल विद केयर, क्योंकि फ्रेजल है, समझ गए होंगे, जब पैकेजेस जाते हैं ना शिपिंग में, तो जो बड़े नाजुक से बर्तन होते हैं उस पर फ्रेजल लिखा होता है, टूट जाएगा, माँ बाप का दिल बड़ी जल्दी टूटता है, और ख़ास तौर पे आप देखिए कि माँ रूठती भी जल्दी है तो मानती भी जल्दी है। बाप रूठते भी देर से हैं, कम ही रूठते हैं बाप, और जब रूठ जाएं तो मानते भी कोई नहीं। ये अल्लाह ताला की एक देन है। और एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि माँ बाप दुनिया में थे तो ये था वो था, अब तो अम्मा अब्बा फौत हो गए। बहुत सारे लोगों का ये एक अलमिया होता है, ख़ास तौर पे जब दीन की तरफ आते हैं। तो एक छोटी सी बात पढ़ के सुनाती हूँ आपको, रियली वाकई हार्ट टची है, और इसका टॉपिक है कि अम्मा और अब्बा हमेशा ज़िंदा रहते हैं। यानी अगर मैं आपको अपने लफ्ज़ों में कह दूँ कि माँ बाप कभी नहीं मरते, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, आइए सुनते हैं। अम्मा और अब्बा हमेशा ज़िंदा रहते हैं। लोग कहते हैं अम्मा अब्बा मर जाएं तो दुनिया वीरान हो जाती है, घर सूना लगता है, पर मुझे लगता है कि अम्मा अब्बा हमेशा ज़िंदा रहते हैं और हमारे साथ रहते हैं, भूल तो हम इनको जाते हैं। हकीकत है कि किसी भाई की आंखें अब्बा जैसी होती हैं और किसी बहन का चेहरा अम्मी जैसा होता है, कोई बाबा की तरह मुस्कुराता है और किसी बहन के हाथ में अम्मी के जैसी लज्जत होती है। अम्मा अब्बा कब मरते हैं, वो कब छोड़ के जाते हैं हमें, अम्मा अब्बा की परछाइयाँ तो इनके बच्चों में पाई जाती हैं, वो दुनिया से जाकर भी हमारे साथ रहते हैं। तो जब कभी अम्मा अब्बा की याद आए तो सब भाई बहन मिल के बैठ जाओ, किसी के चेहरे में माँ मुस्कुराती दिखेगी तो किसी की बातों में अब्बा का लहजा सुनाई देगा, अम्मा अब्बा आस पास ही नजर आएंगे। भला जिस बाग को अम्मा अब्बा ने अपने खूने जिगर से सींचा हो वो कब उजड़ सकता है, तबाह तो हम इसको करते हैं नफ़रतों, हसद, खुदगर्जियों और मतलब परस्ती के हाथों। अम्मा अब्बा तो ज़िंदा हमेशा रहते हैं। अम्मा अब्बा से प्यार कीजिए, भाई बहनों से प्यार कीजिए, और इस प्यार को हमेशा कायम और दायम रखें। यकीन जानिए कि दुनिया जन्नत बन जाएगी। तो अम्मा अब्बा कब मरते हैं, जब भाई बहन लड़ते हैं। ये भी एक अल्लाह की एक अजीब सी सुन्नत है कि माँ बाप की ज़िंदगी में भाई बहन जुड़े रहते हैं, लेकिन जब अम्मा अब्बा नहीं रहते ना तो फिर वो एक तो जुमला आपने सुना होगा कि मैका ख़त्म हो गया। माँ की ज़िंदगी में आप देखिए कि आप कब से नहीं गए पाकिस्तान, आपको साल महीने दिन भी पता होंगे, आपकी अम्मा ने गिन के बता देना, और आप कह दें आना है मैंने अगस्त में, तो वो फिर देखिए ज़रा एक एक दिन गिनेंगी, अब इतने रह गए। तो जब अम्मा अब्बा नहीं रहे तो आपको ये फिक्र लग जाएगी पाकिस्तान जाके रहना किसके पास है, अब जाएं किन के पास। लेकिन भाई बहनों का प्यार बड़ी अहम चीज़ है, माँ बाप की ज़िंदगी में बहुत आसान होता है, माएँ जोड़े रखती हैं, माँ ने उसकी उसको खबर बतानी है, उसको ये है, वो परेशान है, वो खुश है, उसके बच्चा वो उसकी वह। भाई बहन तो आज इतनी मसरूफियत हो गई कि महीनों शायद एक दूसरे को अपनी खैर खबर भी ना दें। क्यों ना दें, क्योंकि मसरूफ़ बहुत है और अपनी ज़िंदगी में खो जाते हैं, बच्चों में, बीवियों में। लेकिन उनके बाद, और ख़ास तौर पे जो मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ आपको इस सबक के नाते से एडवाइस दूँ, कभी माँ या बाप के पैसे पे आपस में भाई बहनों में झगड़ा ना करें, जिसको विरसा कहते हैं। मुझे दुनिया के सबसे बेवकूफ़ और कम समझ भाई बहन वो लगते हैं जो अपने माँ या बाप के छोड़े हुए माल को लेने में झगड़ते हैं। वो सारी ज़िंदगी कमा के आपको दे गए, आपके हाथों से ऐसे निकल गए जैसे बुलबुला सा बन के फटता है, तो आप उस पैसे पे लड़ते हैं, आप प्लॉट्स पे लड़ते हैं, आप कैश और किसी दूसरी उधार की चीज़ों पे लड़ते हैं, आगे का मुझे चाहिए तो पीछे का मुझे चाहिए, जो वो सारी ज़िंदगी करके आपको दे गए, आपको तो मिल भी मुफ्त में रहा है। तो अपने भाई बहनों से अगर आप प्यार करते हैं ना, तो माँ बाप के लिए ये एक सुकून का ज़रिया होता है। अपने भाई बहनों के लिए कभी दिल में बुराई ना रखें। और आज मुझे ऐसे लगता है मादा परस्ती इतनी आम हो गई कि खून के रिश्तों में भी मिठास नहीं रही, तकल्लुफ रह गया। हाँ मुरव्वत है ना। अच्छा, सब बहन भाई अगर अनमेरिड हैं बड़ा प्यार होगा, आपकी शादी हो गई, सारे और भी आपसे प्यार करेंगे। पहले घर में होती हैं बेटियां तो डांट ही खाती रहती हैं, भाई भी झिड़कते ही रहते हैं हर वक्त। और छोटी बहन तो कहती कब तुम जाओगी तो तुम्हारी अलमारी मुझे मिलेगी, तो कब तुम्हारा कमरा मेरा होगा। अभी किसी की शादी थी बच्ची की, तो हम उधर गए कुछ दिन पहले, अभी थोड़े दिन रहते थे, तो उनकी जो छोटी बच्चियाँ थी तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आर यू हैप्पी इसकी शादी, कहती यस। क्यों? क्योंकि कहती मुझे इसकी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ज़रा जाने की तो देर देगी। जिस एक दिन रह कर बहन वापस आती है, सबसे ज़्यादा शौक बहनों को लगा होता है। तो इन खून के रिश्तों को कभी मैला ना करें। अल्लाह ने इस्लाम में खून के रिश्तों की बड़ी कदर दी है, और यही रिश्ते फिर जब सहर के रिश्तों में ढलते हैं, यानी बहन की जगह नंद तो माँ के साथ सास। मैं नहीं कहती कि ये उनके अल्टरनेटर, वो कभी नहीं हो सकते, ये झूठ है कि मैके की कभी याद ना आए। ससुराल में इतना प्यार मिले, जितना भी प्यार मिल जाए मैके की याद फिर भी आएगी। अगर आप कहते हैं ना आए याद, तो ये गलत कहते हैं आप, ये कतअ रहमी है, ये इस्लाम नहीं है। लेकिन याद रखिए कि छोटी छोटी बातों पे बहन भाइयों के दिलों में फिक नहीं डलनी चाहिए। फिर एक और एंगल से भी थोड़ा सा इन आयतों को देख लेते हैं, और वो क्या है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं, यही जो बात है कि इम्मा यबलुगन इन दकल की बर आहदुहुमा व किलाहुमा, बूढ़े माँ बाप को बर्दाश्त करना, ये है असल में इन आयतों की क्रीम। जवान माँ बाप पे आजकल तो सच्ची बात है, माँ बाप बूढ़े लगते ही नहीं है, माओ ने भी बाल काले किए हुए हैं, बाप भी देखने में जवान ही दिखते हैं, लेकिन अंदर तो वो कमजोरियां आई हैं। लेकिन वो बिल्कुल वो बूढ़े माँ बाप के जो बच्चों की शक्ल देखने को तरस है और जिनका वो ओल्ड होम्स में डाल है, आप कहते हैं ये संभलते नहीं, आप कहते हैं इनकी खिदमत के लिए, असल मसला ये है कि वो आपके लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। फिर आप कहते हैं क्या हुआ, नर्स रखी नहीं हुई, इतने पैसे दे रहे हैं इनको। तो फिर बचपन में अगर आपके लिए भी एक रख ली जाती कोई भी मेड, और आपको हफ्तों देखा ही ना जाता, तो आप खुश होते? आप देखिए कि आप कहते हैं वो है ना मासी रखी हुई है, वो दबा जाती है पाँव, और वो है ना नर्स आती है और वो अम्मा की खिदमत करती है। सच बताएं, पैसे लेकर एक गरीब बंदा किसी को दबाए और उसी को उसका बेटा दबाए, फ़र्क है? और उसी को एक मशीन दबाए, तीनों में फ़र्क है। मेड दबाएगी वो कहेंगी ठीक है पैसे ले, और दबाओ भाई ठीक दबाओ पैसे, पैसे लेती हो दबाया नहीं। मशीन के साथ खेलने में हो सकता है कि उनको लगे कि मशीन अच्छी है, पर अकेले बंदा बैठ के अपने आप को मशीन से रगड़ता रहे, लेकिन वो जो लम्स और वो जो मोहब्बत है ना, वो उनको कब मिलेगी? जब अपना बच्चा दबाएगा। उसमें तो जज्बे भी हैं, नरमी भी है, गर्मी। देखिए हर लम्स की एक तासीर होती है कि नहीं, छूने से कितने जज्बे उभर जाते हैं। आप छोटे से बच्चे की तस्वीर देखें या आप स्क्रीन पे उसको दें और आप हाथ से उसको छुएं, कितना गुदास होता है। तो ये जो माँ बाप के साथ ये सारे ताल्लुक होते हैं, इसमें जिस्मानी ताल्लुक भी है। उनको छुएं, उनके बालों में हाथ फेरें, वो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। उनसे उनकी बचपन की कहानियाँ, उनके लाड़ देखें, और कहाँ जाके उनको डांटना, आपने तो हमारे साथ छेकी ही नहीं कभी, आपकी वजह से मेरी ये बुरी आदत है क्योंकि मुझे विरसे में मिली है, और आपने तो मेरे से जान छुड़ाई, मेरा तो रिश्ता ही अच्छी जगह नहीं किया, ये कभी ना करें। फिर माँ की दुआओं की एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ आपको। एक छोटा सा बोर्ड रेड़ी पर छत से लटक रहा था, इस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और उतनी ही मरतबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्ज़ी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रैगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए, साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हों तो मेरी तरफ़ से ले लेना, इजाज़त है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। यानी एक फ्रूट की रेड़ी पर यह नोट लिखा हुआ था। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर रेड़ी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया, वहाँ 100, 50, 10 के नोट भी पड़े थे। मैंने पैसे इसी में रख कर इसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो, और शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। इफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए, देखा एक बारिश यानी दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग आधी काली आधी सफ़ेद दाढ़ी, हल्के क्रीम कलर के कुर्ते शलवार में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाले थे। वो हमें देखकर मुस्कुराए और बोले, साहेब फल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पर बैठे थे, चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से माँ बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो फालज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से, लजाजत से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब में कुछ नहीं, तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता मैं क्या करूँ। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूँ, ना तो मूसा की माँ है, क्या करूँ? ये सुनकर अम्मा ने हाँपते काँपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके इसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाया और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेड़ी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा, आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा। कहने लगी, तू फजर को रेड़ी फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज़्यादा बोल नहीं, शाम को खाली लेकर आया कर, अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल करेगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेड़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, धेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा ही रख जाते हैं, अक्सर तहमीनाए नफ़ा लागत से 300-400 ऊपर ही निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख कर रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वह अपना कार्ड छोड़ गया, पुश्त पे लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है, ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती है, तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद नीचे उतर आता है और बेच बाच जाता है। भाई वो सोना रब एक तो राजिक है, ऊपर से रिटेलर भी है, अल्लाह अल्लाह। आखिर में मुझे अपने बच्चों से कहना है, अगर आप फारिग हों और अपने वालदैन को काम करते देखें तो फौरन उठकर उनकी मदद करें और इन्हें कहें कि अम्मी जान, अब्बा जान, लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ, फिर देखें दुनिया और आखिरत की कामयाबी कैसे तुम्हारे कदम चूमती है। अब आप देखिए कि ये बात आपको अजीब लगे, लेकिन कोई इतनी अजीब बात नहीं है। अक्सर हम रिक्शों के पीछे एक बात लिखी पढ़ते थे पाकिस्तान में, माँ की दुआ जन्नत की हवा। और ये भी माँ को कहते सुना कि हमें तो अल्लाह ने सिर्फ आपके लिए दुआएं करने के लिए ज़िंदा रखा हुआ है, तो ये जो मौका है ये फिर नहीं आना। वो कहते ना, जींदी माँ दी कदर कर भाई, ए मौका फिर नहीं आना, ए मामा नहीं लभदियाँ। तो असल बात ये है कि जब एक इंसान ये सोच लेता है ना कि बस जो मैं इनके लिए कर सकता हूँ मैंने करना है, और कभी अब कर ही नहीं सकते, दूर होते हैं या पास भी होते हैं तो नई हालात ऐसे बनते। अच्छा, पास जब तबीयतें नहीं मिलती, ये भी बताऊँ आपको, पास होंगे तो झगड़ा ही होता रहेगा, तो बेहतर है कि फिर आप दूर रहकर उनके लिए अच्छे जज्बात रखें। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं सोचती हूँ, एक औलाद होने के नाते आप और मैं अपने माँ बाप को दे सकते हैं, वो हम उनके लिए सदका जारिया बन सकते हैं, हम उनके लिए नेकियाँ करने वाले बने। आप यहाँ आके बैठते हैं ना, आने से पहले दिल में सोच लिया करें, मेरा आज यहाँ आके बैठना मेरी माँ के कमर के दर्द को ठीक कर दे, आज उनके जोड़ों में कम दर्द हो। अल्लाह जी, मैं इसलिए पढ़ने गई हूँ कि मेरी माँ के पेट में जो दर्द है ना वो ख़त्म हो जाए, उनका फलां मसला ख़त्म हो जाए, ऐसे दुआ किया करें। और जो को रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, यकीन करें ये वो दुआ है। मैं अपने लिए कोई दुआ मांगूँ अपनी जाती या मैं अपने दीन की, मैं यही दुआ से मांगूंगी। क्यों? जब मुझे वो चीज़ मिलेगी तो मेरे माँ बाप को खुशी होगी ना, मेरी बीमारी दूर होगी तो मेरे माँ बाप को। आप दिल में सोचते रहें, अपनी नीयत करें कोई चीज़ की और कहें रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। आप अपने लिए जो भी मांगेंगे सोच से मांगें कि अल्लाह इसलिए दे कि हमारे माँ बाप को खुशी हो, इसलिए दे कि उनकी आंखें ठंडी हों। आप देखेंगे गैर महसूस तरीके से आपको समझ आएगी।